कह करके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ ये जैन और वैदिक पुराणों के अंदर उल्लिखित है। उसी श्रृंखला में भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत ने जन्म लिया और उनकी आध्यात्मिकता, उनका भेद विज्ञान, उनके द्वारा क्षण मात्र में सटखंड का राज्य छोड़कर दीक्षा लेने का उपक्रम, ये सब भरत को भारत बनाने में, भरत का भारत बनाने में निमित्त रहा है। अर्थात उन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब उन्हीं भरत भगवान का जो चरित्र चित्रण चल रहा है उसी ओर आपको ले चलती हूँ। बीज राख फल भोग वे ज्यो किसान जग माई, क्यों चक्री नृप सुख करें धर्म विसारे नाई। ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं वज्रनाभि चक्रवर्ती की बात वैराग्य भावना में, कि जो पुण्यवान जीव हैं, स्वर्गगामी मोक्षगामी सम्राट हैं, वे चक्रवर्ती बन करके भी उसको कैसे उपभोग करते हैं, इसके लिए एक चतुर किसान की उपमा दी कि जैसे चतुर किसान बीजों को रख करके ही फल का उपभोग करता है, क्योंकि उन बीजों से आगे की खेती करके और अन्न और अधिक उत्पन्न करना होता है। वह चतुर नहीं कहलाता जो बीज को रखता भी नहीं और सारे खेत के अन्न का उपभोग कर लेता है। इसी प्रकार से चक्रवर्ती के लिए कहा, क्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाई। पूर्व पुण्य के उदय से जो उन्हें चक्रवर्ती की संपदा मिली है, चक्रवर्ती का ऐश्वर्य मिला है, रूप मिला है, उसका उपभोग भी करते हैं और धर्म को कभी भी भूलते नहीं है, धर्म को विस्मृत नहीं करते हैं और मोक्ष जाने तक उस धर्म की पोटली को इकट्ठी करके पुण्य के रूप में प्राप्त करके पुण्य फला अरिहंता के रूप में अनंत अवस्था पश्चात सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसा ही चरित्र भगवान भरत का रहा है। आपने जाना है कि चक्रवर्ती छह खंडों पर विजय प्राप्त करके प्रसवाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिख करके अब अयोध्या के अंदर आ चुके हैं और साक्षात इंद्र देवता और जो साथ में आए सारे राजागण थे और अयोध्या की सारी प्रजा ने मिल करके चक्रवर्ती भरत का चक्रवर्ती पद पर राज्याभिषेक किया था। हमने कल बताया था कि प्रजा ने भी किया, सरयू नदी के जल से लाकर दोनों के अंदर, प्रत्येक की दोनों के अंदर वे जल भर करके लाए और चक्रवर्ती भरत का चरणाभिषेक किया। राजाओं ने उनके मस्तक पर मुकुट बांधा और सारी सभासदों ने चक्रवर्ती भरत की जय जयकार से आकाश को गुंजायमान कर दिया। ऐसे ही भरत महाराज का राज्य चल रहा है और निरंतर चक्ररत्न उनकी प्रभा को द्विगुणित कर रहा है। अर्थात ये चक्ररत्न उनके पुण्य से आयुषशाला में उत्पन्न हुआ था और अब राजसभा के अंदर भी वह चक्ररत्न विराजमान है और उसी चक्ररत्न की साक्षी में ये राज तिलक चक्रवर्ती पट्टाभिषेक भरत जी का हुआ है। ऐसे भरत महाराज राज्य कर रहे थे, उनके पास जहां नौ निधियां 14 रत्न बताए वहीं 10 प्रकार के भोग साधन कहे हैं, रत्न सहित निधियां, रानियां, नगर, सैया, आसन, सेना, नाट्यशाला, बर्तन, भोजन और सवारी। ये 10 भोगों के साधन चक्रवर्ती के पास सदैव उपलब्ध रहते थे, यानी भरत महाराज का महाकल्याण नाम का दिव्य भोजन था। भोजन का भी नाम है देखो महाकल्याण, जिससे कि कल्याण में शरीर को धारण करने वाले बल सहित तृप्ति और पुष्टि दोनों ही चक्रवर्ती को हो जाया करती थी। साधारण भोजन से उनका बल बढ़ने वाला नहीं था। कभी भी किसी राजा के भोजन के बारे में जब सुनते हैं तो पता चलता है कि उनका भोजन कुछ स्पेशल हुआ करता था और उनके भोजन को टेस्ट करके उसके बाद उन तक पहुंचाया जाता था कि कोई शत्रु कभी किसी प्रकार से कोई मिलावट ना कर दे। आज भी देखा जाता है जब कहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह जाते हैं, सारा कुछ चेक किया जाता है और वहां पर उनकी पूरी व्यवस्था, उनकी व्यवस्थाओं की भी इंक्वायरी पूरी LIU के द्वारा, खुफिया एजेंसी के द्वारा की जाती है। तो चक्रवर्ती के लिए भला साधनों की क्या कमी, ना साक्षात देवता और मंडलिक महामंडलिक राजागण उपस्थित रहते थे। तो कहा है कि अत्यंत गरिष्ठ रस से युक्त स्वादिष्ट सुगंधित रुचिकर अमृत गर्भ नाम के खाने योग्य मोदक जो लड्डू होते थे, उन पदार्थों से जिन्हें चक्रवर्ती के सिवाय और कोई भी नहीं पचा सकता था, ऐसा भोजन, ऐसे लड्डू, ऐसे मिष्ठान उनको दिए जाते थे। और अमृत कल्प नाम के स्वास्थ्य पदार्थ थे जो जिनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता था और मसाले वगैरह से भी जिनको संस्कारित किया जाता था, इसलिए स्वाद्य माने उनका स्वाद भी बड़ा अच्छा स्वाद रहता था। कि आचार्य जिनसेन स्वामी ने जो महापुराण के अंदर वर्णन किया उसी के अनुसार पूज्य ज्ञानमती माता ने छोटी सी पुस्तक के अंदर भी इन सारी चीजों को महत्वपूर्ण समझ करके लिखा है कि एक चक्रवर्ती के पद में भी उनकी इतनी विशेषताएं जीवन की हुआ करती थी। उनका भोजन, उनका रहन सहन, उनके वस्त्र, उनका सिंहासन, उनका मुकुट, उनके उनका अंतःपुर, उनकी रानियां, उनके पुत्र, सब कुछ विशेष होते थे। और अमृत नाम के दिव्य पानक पेय पदार्थ जो होता था रसायन, वह बहुत मधुर होते थे। इन भोज्य खाद्य स्वाद्य और पेय पदार्थों को चक्रवर्ती के सिवाय और कोई भी प्रयोग नहीं करता था, ये विशेष बात होती है। जैसे तीर्थंकर भगवान का भोजन स्वर्ग से आता है, स्वर्ग के अंदर सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग, सानत कुमार और महेंद्र, इन चार स्वर्गों में उनकी मानस स्तंभ बने हुए हैं और उनके अंदर पिटारे हैं। उन पिटारों के अंदर दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य भोजन रोज की रोज ताजा ताजा देवों पुनीत होता था। अब उसे ही लेकर के देवता आते थे, तब भगवान उसका भोजन करते थे। वे ना अपनी माँ का उन्होंने दूध पिया, ना माँ की रसोई का भोजन खाया। भगवान केवल दीक्षा के बाद ही श्रावक के घर में, गृहस्थ के घर में भोजन करते थे। तो ऐसे दिव्य विशेष भोजन आदि को ग्रहण करते हुए चक्रवर्ती अपने पुण्य का उपभोग कर रहे थे। और बाहुबली भगवान के पास जाकर के जो उन्होंने दिव्य पूजा की है उसका भी वर्णन बहुत विशेष है कि उन्होंने कितने दिव्य रत्नों के द्वारा जाकर पूजा की थी बाहुबली की। और उनके केवल ज्ञान होने पर गंधकुटी में बैठ करके दिव्य ध्वनि का पान किया था। अब क्या होता है कि एक दिन भरत जी अपनी राजसभा में बैठे थे, उनकी इच्छा हुई कि मैं अयोध्या के तमाम राजाओं को, प्रजा को अपने राज्य में आमंत्रित करूं। उन्होंने भोजन के लिए सबको आमंत्रित किया परीक्षा करने के लिए कुछ हरित काय कोपल फूल घास ये सब चीजें वहां उससे बिल्कुल राजसभा को अपने अंतःपुर को भर दिया। तो लोग आए और उसमें से कुछ लोग जो विवेकी जन थे वे वापिस चले गए। अगले दिन महाराज ने उन कोपल फूल आदि को सबको घास को हटवा दिया। तो वे लोग आई बड़े प्रेम से आकर के बैठे। भरत ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया था, कल नहीं आए थे आज आ गए। तो बोले महाराज ऐसे ऐसे अपराशक चीजें थी और हमने सोचा कि हमारे पैर से इनको क्यों रौंदा जाए, तो हम इसलिए नहीं आए थे। आज जब हमने सुना ये चीजें हट गई हैं तो हम आए। भरत जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि हमारे राज्य के अंदर इतने विवेकी लोग भी हैं। तब उन्होंने महापुरुषों के लायक और साधारण जनता के लायक भी उन्होंने छह प्रकार की वृत्ति का उपदेश दिया, क्योंकि भरत महाराज बड़े ज्ञानी थे और उनकी बात सब ध्यान से इसलिए श्रवण करते थे कि भगवान ऋषभ देव की समूह शरण से सुन सुन करके अच्छी अच्छी बातें और आ करके अपनी पूजा को बताया करते थे। तो उन्होंने उपास का ध्यान अंग के अनुसार उन्होंने आकर के अपने राज्य के अंदर एक दिन अच्छी बातें बताई छह प्रकार की। इज्जा, वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप। सत्कर्मों का वैसे तो आप लोग उपदेश जानते हैं कि देव पूजा, गुरु पास्त्री, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्था नाम सत्कर्माणी दिने दिने। किंतु भरत जी ने इन अलग सत्कर्मों को बताया। तो महर्षि राजर्षि भरत ने उस समय अनुक्रम से अरहंत पूजा आदि का वर्णन किया। उन्होंने बताया इज्जा, इज्जा का अर्थ है अरहंत देव की पूजा, और पूजा के अंतर्गत उन्होंने बताया सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रुम और आष्टांग, यानी रोजाना जो पूजा करते हैं नित्यमय पूजा जिसको कहते हैं ये सदार्चन हो गया, ऐसे चतुर्मुख, कल्पद्रुम, आष्टांगिक पूजा, इन सब पूजाओं का वर्णन तब से हमारे आगम के अंदर है। आज जो आप कल्पद्रुम पूजा या इंद्रध्वज पूजा इनको पढ़ते हैं ज्ञानमती माता जी केवल इनका वर्णन नाम पढ़ा, लेकिन इनके अंदर क्या होता है इसके बारे में साल साल छह छह महीने तक इन्होंने चिंतन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। कोई जानता ही नहीं था कि कल्पद्रुम विधान में होता क्या है। इतना था कि चक्रवर्ती पूजा करते हैं इस पूजा को, और उसके बाद वो जो है उस पूजा को करते हुए सबको किमिच्छक दान बांटते हैं। अब आज ना चक्रवर्ती है और ना किमिच्छक दान बांटा जा सकता है, लेकिन ज्ञानमती माता ने सन 86-87 में खूब चिंतन करके और कल्पद्रुम पूजा कल्पद्रुम विधान को बनाया। उसमें भगवान की समोसरण के एक एक अवयव का वर्णन किया और वो समोसरण के साथ में जो कल्पद्रुम विधान बना वो एक महाकाव्य के रूप में कल्पद्रुम विधान संसार के लिए प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। किमिच्छक दान की जगह उसमें किया गया प्रतिदिन चारों प्रकार के दान देना, साधुओं को भी आहार दान देना और जो गरीब लोग हैं या पारस्परिक श्रावक लोग हैं उनके भी वात्सल्य भोज आदि करना, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, इन सब को आज भी जब कल्पद्रुम विधान होता है तो श्रावक लोग करते हैं। ऐसे इज्जा नाम के प्रथम कर्तव्य को भरत जी ने बताया और उसने सब प्रकार की पूजाओं का इंद्रध्वज पूजा का भी वर्णन किया जिसे इंद्रगण करते हैं ध्वजाओं को चढ़ाते हुए। उसके बाद में उन्होंने वार्ता बताया कि विशुद्ध आचरण पूर्वक खेती आदि छह क्रियाओं से किसी के द्वारा भी आजीविका करना ये वार्ता नाम की क्रिया बताई है। दत्ती, दान देना दत्ती है, इसके चार भेद बताए। दया दत्ती, आप लोग नोट करिएगा क्योंकि ये बड़ी नई चीजें हैं आपको अच्छी लगेगी। दया दत्ती, पात्र दत्ती, समदत्ती और अन्वय दत्ती। इनको इस पुस्तक में संक्षिप्त में बताया है कि दया पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि के साथ जो अनुग्रह करने योग्य जीव है उनका उपकार करना, उनका भय दूर करना और उनके योग्य सामग्री देना, ये दया दत्ती है। इसको करुणा दान भी कहते हैं। जैसे किसी को कोई गरीब व्यक्ति है उनको भी कुछ देना है, आप कभी पैसा देकर के, अगर मान लो व्यसनी है, उन्होंने जाकर शराब पी लिया या उस पैसे का कोई दुरुपयोग किया, तो आपको पुण्य नहीं लगेगा, पाप लगेगा। उनको भोजन करा दो, उनको वस्त्र दे दो, कोई आवश्यकता है उसको कर दो, इसको दया दत्ती कर दो। ऐसे ही अन्वय दत्ती, पात्र दत्ती, समदत्ती का वर्णन भी आप इसमें पढ़ें। नंबर चार में है स्वाध्याय, शास्त्रों का चारों अनियोगों के अध्ययन करना, संयम, व्रतों को धारण करना, यथा योग्य संयम है, तप है, उपवास आदि करना, कंकावली, मुक्तावली, दस लक्षण, सोलह कारण, इन व्रतों को करने की परंपरा है, ये तप कहलाता है। ये छह प्रकार की विशुद्धि वृत्ति आप विवेकी लोगों को करना है, ऐसा भरत जी, जिनको राजर्षि की उपमा भी लोगों ने दी है, राज ऋषि, राजा होकर के भी ऋषियों की तरह से अपना आचरण बनाया। आगे आप इसको और भी श्रवण करते रहे, उन्होंने किस प्रकार से 53 क्रियाओं का भी वर्णन किया है। ऐसे भरत महाराज जहाँ राज्य संचालन करते थे, वहीं समय समय पर प्रजा को, सभासदों को, जनता को अपने उपदेशों से हमेशा संबोधित भी किया करते थे। ऐसे भरत भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की, उनके चरणों में बारंबार नमन करते हुए आगे की ओर आपको ले चलती हूँ।